जैसे ही विनीत ने अभी मरे कहा, सब उसकी ओर घूरने लगे। विनीत ने फट से अपने कान पकड़ लिया और बोला, मुझे नहीं पता था अरवी भांग खा लेगी, आई मीन पी लेगी। अभी तक विनीत ने किसी को कुछ नहीं बताया था। जब से आयांश अरवी को अंदर लेकर गया था तब से वो परेशान होकर इधर उधर चक्कर लगा रहा था। सब उसे चक्कर लगाते देख रहे थे कि कब वो बोलेगा, क्योंकि विनीत को परेशान देख सब जान गए थे कि करा धरा तो विनीत का ही है, जिसके बाद ये सब हुआ। मैं तो आयांश के लिए लाया था और उसे ही दिया था जूस, पता नहीं अरवी ने कैसे पी लिया। और दादू, आप भी जानते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया। वो कुछ कह ही नहीं रहा था, मुझे भी बोल दिया कि मैं अरवी से बात नहीं करूंगा, पर हम चाहते हैं ना कि वो जल्द अपने दिल की बात अरवी को बताए ताकि वो फिर साथ आ जाए। विनीत दिनकर जी की ओर देखते हुए एक सांस में ही बोल रहा था। अभी और वर्तिका ने हैरानी से एक दूसरे की ओर देखा और एक साथ बोले, क्या मतलब? ये सुनते ही विनीत बोलते बोलते रुक गया और अपने कान छोड़ हाथ भी फट से नीचे कर लिए। दिनकर जी विनीत की ओर देखकर नामे सिर हिलाते हैं। तभी अभी बोला, क्या बोल रहे हैं आप विनीत जी? वर्तिका ने कहा, हाँ विनू, और तुम आयांश को भांग क्यों पिला रहे थे? क्या चल रहा है ये सब? एक्चुअली अभी और वर्तिका कुछ नहीं जानते थे। उनके सवाल सुन विनीत ने दिनकर जी की ओर देखा तो दिनकर जी बोल पड़े, हमें घर जाना है विनीत। विनीत ने हाँ में सिर हिलाया और अभी वर्तिका की ओर देखते हुए कहा, अभी दादू को छोड़ाऊं, आकर बात करता हूँ। इतना कहकर विनीत दिनकर जी और राधे को लेकर वहां से चला गया। तभी अभी आरवी कहता हुआ अंदर की ओर भागा। वर्तिका भी पीछे चली आई। अभी हॉल में रुककर वर्तिका की ओर देखता है। वर्तिका ऊपर की ओर इशारा करते हुए बोली, मेरे रूम में। और दोनों वर्तिका के रूम में पहुंचे। आरवी सो रही थी। अभी आरवी के सिरहाने बैठकर उसका सिर सहलाते हुए बोला, भांग के नशे में इसने जो कर दिया इसे तो इसकी खबर भी नहीं। होश में आने के बाद पता चला तो न जाने क्या होगा। वर्तिका दूसरी तरफ से आरवी के पास बैठते हुए बोली, आयांश को रंग बिल्कुल पसंद नहीं। आरवी ने उस पर रंग डाल दिए और वो बहुत गुस्से में गया है यहाँ से। और वीनू भांग क्यों लाया? क्यों आयांश को पिलाना चाहता था? और जो बोल रहा था उसका क्या मतलब है? ये भी हमें नहीं पता। अभी आरवी की ओर देखते हुए बोला, वो तो विनीत जी ही आकर बताएंगे, मुझे उनके वापस आने का इंतजार है। वर्तिका ने कहा, मुझे भी। आयांश घर पहुंचा। उसे रंग में रंगा देख गार्ड भी हैरान हो गया। आयांश तेजी से चलता हुआ अपने रूम में चला आया, कोट उतार कर जमीन पर फेंका, वॉच फोन निकालकर बेड पर फेंके और वॉशरूम में चला गया। शर्ट पहने ही शावर ऑन कर दीवार पर हथेली टिकाकर आंखें मूंद कर शावर के नीचे खड़ा हो गया। शावर से गिरता पानी उस पर लगे रंग को साफ कर रहा था। पर आयांश को सुनाई पड़ रहे थे आरवी के वो सवाल कि त्योहार क्यों नहीं मनाते, रंग क्यों नहीं पसंद, और दिखाई पड़ रहा था आरवी का उसे रंग लगाना। तभी दीवार पर जोर से हाथ मारते हुए आयांश गुस्से में जोर से चिल्ला उठा। उस वक्त अगर कोई पास होता और उसका गुस्सा और उसका चिल्लाना सुनता तो चौंक कर डर जाता। विनीत ने मेहरा सदन में गाड़ी रोकी। राधे गाड़ी से उतर गया। विनीत गाड़ी से उतरने लगा कि दिनकर जी ने अपना हाथ दिखाकर रोक दिया, कोई जरूरत नहीं है, तुम वापस जाओ, अभी तुम यहाँ ना रुको तो ही बेहतर है, वरना उसका गुस्सा तुम भी जानते हो। विनीत, आरवी का ख्याल रखो जाकर, अभी तुम्हारा यहाँ से ज्यादा वहाँ होना जरूरी है, ध्यान रखना उसका अच्छे से। ये सुन विनीत ने दादू कहना चाहा, पर दिनकर जी राधे की मदद से गाड़ी से उतरे और अंदर की ओर बढ़ गए। विनीत उनको जाते देखते हुए गाड़ी स्टार्ट करता है और वहां से चला जाता है। अंदर जाते ही दिनकर जी सीधे ऊपर आयांश के रूम की ओर बढ़ गए। उनको ऊपर जाते देख राधे खुद से मन ही मन बोला, क्या सोचा था और क्या हो गया। दिनकर जी आयांश के रूम के सामने पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। अंदर आयांश आईने के सामने खड़ा शर्ट पहन रहा था। दिनकर जी ने फिर दरवाजा खटखटाया, अंदर आने दोगे हमें या लौट जाएं यहाँ से? तभी आयांश ने दरवाजा खोल दिया और वापस आईने के सामने जाकर शर्ट के बटन लगाते हुए बोला, शर्ट पहन रहा था दादू। अच्छा, हमें लगा हमारे लिए भी तुम्हारे कमरे का दरवाजा नहीं खुलेगा। दिनकर जी अंदर आते हुए बोले, ऐसा हुआ है क्या आज तक दादू जो अब आपको ऐसा लग रहा है? आयांश ने बेड से टाई उठाई और आईने के सामने जाकर टाई पहनने लगा। ये सुन दिनकर जी बेड पर बैठ गए और आयांश की ओर देखते हुए बोले, आज तक तुमने अपना गुस्सा भी तो इतनी जल्दी नहीं भुलाया और ना ही इतना अंदर दबाया। तुम्हारे लिए आज जो हुआ वो बात इतनी छोटी भी नहीं थी, फिर भी इतना शांत, हैरान होते हुए। ये सुन आयांश के हाथ जहाँ थे वहीं रुक गए और उसने अपनी आंखें मूंद ली। तभी दिनकर जी फिर बोले, बताओ आरवी ने जो किया आज उससे तुम्हें गुस्सा तो आया होगा ना? जरूर आया होगा, और वो गुस्सा सालों पुराना तुम्हारे अंदर के उस गुस्से को भी खींचकर बाहर ले आया होगा जिसे तुम खत्म तो आज तक नहीं कर पाए हो, पर जो आज हुआ उसे हुए ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ है। फिर इतनी जल्दी तुमने अपने उस गुस्से पर जीत कैसे पाली? वहां से यहाँ आते वक्त यही सोच रहा था कि क्या हालत होगी तुम्हारी, पर तुम्हें देख तो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आयांश अभी भी खामोश खड़ा था। आयांश की खामोशी दिनकर जी को और ज्यादा परेशान कर रही थी। वो फिर जोर से चिल्लाए, बोलो अंशु, हम जानना चाहते हैं, तुम्हारे आज का गुस्सा सिर्फ गुस्सा ना था और इतनी जल्दी जा भी नहीं सकता था, गुस्से के साथ तुम्हारे अंदर का दर्द भी था। आरवी ने आज तुम्हें तुम्हारा बीता कल याद दिला दिया, वो बीते कल का दर्द जो आज भी तुम्हारे सीने में दफन है, पर उसे तुम सालों से अपने अंदर इस कदर दबाए हुए हो कि उसे तुमने खुद पर हावी नहीं होने दिया, जिसका जिक्र तक आज तक ना हुआ। पर आरवी ने आज तुम्हें हर चीज याद दिला दी, जो यादें भी तुमको नहीं पसंद। एक तरह से उसका जिक्र हुआ है तुझसे। सोचने पर मजबूर जरूर हुए होंगे ना जो सालों पहले हुआ था। इतने सब के बाद भी तुम इतना नॉर्मल। हम डर गए थे बेटा आज की अब क्या होगा, कहीं तुम गुस्से में खुद को और आरवी को चोट ना पहुंचा दो। पर अब देखो, तुम में तो गुस्से का नामो निशान भी नजर नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों? तभी अयांश ने अपनी आंखें खोली और टाई बांधते हुए बाल बनाते हुए बोला, गुस्सा करूं तो आपको प्रॉब्लम, ना करूं तो आपको प्रॉब्लम। आप चाहते क्या है दादू? ये सुन दिनकर जी हल्का सा मुस्कुरा दिए। जैसे तुम जानते नहीं, क्या मैं नहीं जानता? सालों पुराना दर्द जो तुम अपने अंदर दबाए हुए हो, जाहिर बेशक ना करो पर तकलीफ तो तुमको देता है ना। जिक्र तुम और मैं ना करें पर वो सब मन में तो दबा है ना हमारे। और आज तो तुम्हारे उस दर्द पर फिर वार हुआ है, तुम्हें वो दर्द याद दिलाया गया है। तुमने सोचा है उस दर्द के बारे में और अब तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही होगी? मैं समझ सकता हूँ बेटा। और अंशु, आज तुम उस तकलीफ को छिपाने में लगे हो जो सही नहीं है। आरवी को बेशक तुमने चोट ना पहुंचाई हो, पर तुम्हें तो चोट लगी है ना, जिसको तुम दिखाना नहीं चाहते। इससे अच्छा तुम चिल्लाओ, गुस्सा कर लो, मुझ पर ही कर लो, मुझे मेरे बच्चे की चिंता हो रही है। कुछ तो कहो, मुझसे ही कह लो। सालों पहले लगी थी तुम्हारे मन पर चोट, आज फिर हरी हो गई और एक उफ तक नहीं। हैरान परेशान होते हुए अयांश बिना कोई एक्सप्रेशन चेहरे पर लाए अपना कोट उठाकर पहनते हुए बोला, मैं ठीक हूँ दादू, आप यूं ही परेशान हो रहे हैं। ये सुन दिनकर जी खड़े होते हुए बोल पड़े, आरवी ने तुझे दर्द दिया है ना, जिसे तुम अपना मानते हो।
ये सुन अयांश आईने के सामने आकर कोट के बटन लगाते हुए बोला, अपनों से दर्द मिलना कौन सी नई बात है दादू, हमेशा से यही तो होता आया है, ताज्जुब की बात क्या है इसमें। और हाँ दादू, अनजाने में आरवी ने आज मुझे बेशक तकलीफ दी है, भांग के नशे में थी वो, पर आप ये मत भूलिए मैंने उसे जानबूझकर दर्द तकलीफें दी हैं। जिसे मैंने दर्द दिया उससे मुझे दर्द मिला, तो आप इतने हैरान क्यों? कहावत है ना एक, जो जैसा करता है वैसा पाता है। दिनकर जी की तरफ देखकर भौहें उठाते हुए, तकलीफ का समझ आया, माहिर हो तुम उसे छिपाने में और ना दिखाने में। चलो मान लिया कि तुमने आरवी को दर्द दिया, उसने तुम्हें दे दिया, तुमने गलतफहमी में उसे चोट पहुंचाई, उसने अनजाने में, जख्मी तो दोनों हुए, हालात जो हों, पर गुस्सा उस पर कंट्रोल कैसे, जो कि बहुत मुश्किल है तुम्हारे लिए, दिनकर जी ने अयांश से सवाल किया। अयांश वॉच उठाकर पहनने लगा और आरवी के बारे में सोचते हुए बोला, गुस्सा तो बहुत आया दादू, उसकी जगह कोई और ऐसी हरकत करता मेरे साथ, फिर चाहे जानबूझकर या अनजाने में, तो अंजाम आप भी जानते हैं क्या होता। पर गुस्से से बढ़कर हो गई दादू आरवी आज मेरे लिए, तभी तो मैं खुद को वहां रोक नहीं पाया, चला आया वहां से। अगर रुकता तो आप भी जानते हैं मेरा गुस्सा उस पर उतर जाता। होश में ना थी वो तब उसने किया, वरना कहाँ वो मेरी तरफ आती है, और मैं नहीं चाहता उस पर गुस्सा करना, कुछ ऐसा करना जो मेरे हाथों उसके साथ गलत हो जाए। पहले भी उसे गलत समझकर उसके साथ गलत कर चुका हूं, जबकि ना तब उसकी गलती थी और ना आज। आरवी के बारे में सोचते हुए दिनकर जी उसकी तरफ आए और कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, जब इतना चाहता है तो कह क्यों नहीं देता उससे। क्रमशः